जल संकट।
दोस्तों, कार्यक्रम जल संकट की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
पानी के स्रोतों के प्रबंधन, पानी की आपूर्ति और पानी की संरचनाओं के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों के लिए ईरान को पहला देश माना जा सकता है। दिस पुल की पहली पंचक्की दिस पुल के प्राचीन पुल के साथ दिस नदी में 1700 साल पहले सासानी शासनकाल में बनाई गई थी। कई ऐसी पंचक्कियां थीं जो 70 साल पहले तक सक्रिय थीं और लोगों की आटे की ज़रूरत को पूरा करती थी, लेकिन आटा मिलों के निर्माण के बाद इनका चलन कम हो गया। पंचक्की जल संरचनाओं का एक समूह होता है। इस समूह में बांध और पंचक्कियां होती थीं। देज नदी के निरंतर प्रवाह के कारण इस परिसर का निर्माण उसी समय किया गया था जब नदी के किनारे शहर का निर्माण किया गया था। उसके बाद शहर के विकास और निवासियों की ज़रूरतों को देखते हुए उसका विस्तार होता रहा।
देसफुल की पंचक्कियों का इतिहास सासानी काल से जाकर मिलता है, लेकिन नदी के तीन भागों में मौजूद उनके खंडोरों का संबंध सफवी और काजारी काल से है। ये संरचनाएं नदी के पत्थरों और ईंटों जैसी सामग्रियों से बनाई गई हैं। ये पंचक्कियां इस तरह से एक दूसरे के निकट हैं कि वो बांध का भी काम कर रही हैं, जिससे पानी की धारा को भी मोड़ा जा सकता है। ये सिस्टम आधुनिक सासानी सिस्टम था, जिसे नदी के पहले हिस्से को काट दिया जाता था। इस संरचनाओं का नाम पुल बंद या दम बेरेज है, जो नदी के पश्चिमी और पूर्वी भागों को जोड़ने के अलावा पानी की आपूर्ति या सिंचाई के लिए नदी की सतह को कम या ज़्यादा करने में मदद करती थीं। इन पंचक्कियों के भीतरी भाग की ऊंचाई लगभग 4 मीटर की होती थी।
फ्रांसीसी इतिहासकार रोमन ग्रिशमैन ने अपनी किताब ईरानी कला में इस सिस्टम को प्राचीन काल में पानी की आपूर्ति का सबसे पुराना सिस्टम करार दिया है। ग्रिशमैन के मुताबिक ये सिस्टम 1400 से 1500 साल पुराना है। नए शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार नदी के बीच में एक विशाल मेहराब का खंडर है, जो सासानी दौर के हाल की तरह दिखता है, और सासानी राजाओं की रुचि के अनुसार इसे उनकी किसी सरदार या दरबारी से संबंधित निर्माण के अवशेष के रूप में माना जा सकता है। ये संरचना एक विशाल बांध हैं, जिन्हें बाद में कुछ परिवर्तनों के साथ पंचक्कियों में परिवर्तित कर दिया गया था।
पंचक्कियों के अंदर नीचे के हिस्से में 2 टुकड़ों में पत्थर है, जो नदी के पानी की ऊर्जा से घूमता है और उसके घूमने से ऊपर वाला चक्र भी घूमता है। हर पंचक्की में 5 कर्मचारी काम करते थे, जो खच्चरों पर गेहूं लाने, पंचक्की तक गेहूं पहुंचाने, चक्की के पार्ट को नियंत्रण करने और आटा इकट्ठा करने जैसी जिम्मेदारियाँ पूरी करते थे। इसी प्रकार रात में एक आदमी की जिम्मेदारी चक्कियों की देखभाल करना होती थी। जिन मौसमों में नदी में पानी की सतह कम हो जाती थी, उन मौसमों में पानी की सतह को ऊपर लाने के लिए और पानी के प्रवाह को पंचक्कियों की ओर मोड़ने के लिए पत्थरों से भरी हुई टोकरियों का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों से भरी हुई ये टोकरियाँ एक बांध के तौर पर काम करती थीं।
ये पंचक्कियाँ निजी संपत्ति थीं। सफवी काल में इनकी संख्या 50 से 60 तक थी, जिनमें से कुछ बाढ़ के पानी के कारण नष्ट हो गईं। दिस पुल की पंचक्कियां देज नदी के विभिन्न भागों में स्थित हैं। उनमें से कुछ दिस पुल बांध और देज तटीय मनोरंजन स्थल से 800 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और कुछ पुराने पुल के निकट स्थित हैं। लेकिन विश्व का सबसे पुराना बहुउद्देशीय औद्योगिक परिसर शुस्तर शहर में स्थित है। ये परिसर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऐतिहासिक बहुउद्देशीय संरचना है, जहां पानी की सुरंगें, बांध, पुल, पंचक्कियां और तेल निकालने के कारखाने स्थित हैं।
शुष्तर का ऐतिहासिक वाटर सिस्टम की, जिसे शुष्तर जलीय संरचना के रूप में जाना जाता है, उन 13 ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन धरोहरों को हकमनेशी से सासानी काल तक पानी से अधिक लाभ उठाने के लिए बनाया गया था। फ्रांसीसी पुरातत्वविद मैडम जॉन डियोलाफोवा ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसे औद्योगिक क्रांति से पहले का सबसे बड़ा औद्योगिक परिसर बताया है। ये 13 ऐतिहासिक धरोहर शुष्तर शहर में एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं और 2009 में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में 10वीं ईरानी धरोहर के रूप में पंजीकृत किया गया है।
झरने और पंचकियां शुष्तर शहर जनरचना समूह की ऐतिहासिक संरचनाएं हैं, जिन्हें देखने के लिए सबसे अधिक लोग आते हैं। इस प्राचीन परिसर में बड़ी संख्या में पंचकियां हैं और इन पंचकियों को चलाने के लिए पानी की ऊर्जा के उपयोग का एक बड़ा उदाहरण यहां देखा जा सकता है। ये संग्रह सबसे अनोखे उदाहरणों में से एक है जिसका उपयोग प्राचीन काल में पानी के अधिकतम उपयोग के लिए किया जाता था।
दोस्तों, इस ऐतिहासिक परिसर की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसका शुष्तर शहर के ऐतिहासिक और प्राचीन हिस्से के निकट स्थित होना है। औद्योगिक इस्तेमाल के अलावा इस परिसर का इस्तेमाल पानी की कमी वाले दिनों में शहर के लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए भी किया जाता था। इस परिसर की एक बहुत ही सुंदर और अनूठी विशेषता यह है कि पंचक्कियों में इस्तेमाल के बाद पानी सुंदर कृत्रिम झरनों के रूप में गिरता है, जो एक शानदार दृश्य को जन्म देता है। इसी तरह से यहाँ सुंदर प्राकृतिक परिदृश्य भी पाए जाते हैं।
जल आपूर्ति टनलों के डिज़ाइन में जो कुछ जटिलताएं पाई जाती हैं, वो उनका भूमि सिंचाई के अलावा दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होता है। गरगर बांध के पुल के पीछे की 3 टनलों का पानी पंचक्की के पाटों को घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। शुष्तर पंचक्कियों और झरनों का निर्माण गरगर नदी में किया गया है, जो खुद एक प्राचीन काल की तकनीक और इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है। पूर्ण रूप से गरगर नदी को खोदकर बनाया गया था और इसके निर्माण का श्रेय सासानी राजा अर्धशीर बाबकान को दिया जाता है, लेकिन पुरातात्विक अध्ययनों में इसका और भी पुराना इतिहास बताया गया है। कारून नदी के किनारे स्थित होने के कारण शुष्तर में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ और सुविधाएं रही हैं।
शुष्तर में सबसे पुरानी ज्ञात धरोहर पुरापाषाण और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। शुष्तर पानी के बीच एक द्वीप के रूप में स्थित है और यहाँ नालों, बांधों और पंचक्कियों के रूप में हर ओर जलीय वास्तुकला के नमूने देखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार शापुर सासानी के काल में शुष्तर का विकास कार्य पूरा हुआ और इस शहर ने अपने इतिहास का सबसे शानदार समय व्यतीत किया। सिंचाई की सुविधा के कारण इस शहर में कृषि का भी विकास हुआ। शुष्तर को जलीय इमारतों और संरचनाओं का एक संग्रहालय कहा जा सकता है। उपयुक्तता की दृष्टि से ये सभी इमारतें एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए दुनिया भर में एक अनूठा शहर है।
ये निर्माण समूह इस तरह से काम करता है कि गरगर बांध ने नदी के प्रवाह को रोक दिया है और पत्थरों में खोदी गई 3 टनलों तक पानी की आपूर्ति के लिए पानी के स्तर को ऊपर तक पहुँचा दिया है। तीनों टनल पानी को निर्माण समूह तक पहुंचाती हैं। वहां पहुंचकर ये पानी विभिन्न नालों में बंट जाता है और चक्की के पार्ट को घुमाने के बाद झरनों के रूप में पुल में गिर जाता है। कार्यक्रम के आखिर में कहा जा सकता है कि शुस्तर और देशफूल दो ऐसे शानदार उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि लोग किस तरह से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते थे। इस पानी से नदी के मार्ग में या चट्टान के अंदर खोदे गए गढ़ों में पंचक्कियों का संचालन होता था। इस पानी की ऊर्जा से गेहूं या दूसरे अनाज को पीसा जाता था और बांधों से कारू नदी के पानी को एक बड़ी चूने की चट्टान की ओर मोड़ दिया जाता था। इस प्रकार लोग सदियों तक प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे और जल संसाधनों को सर्वोत्तम तरीके से प्रबंधित करते रहे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या अब हमें इन पुरानी इमारतों की जरूरत नहीं है और 21वीं सदी में हम उन्हें बाय बाय कर दें।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।